یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو کہ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی؟ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے.
یہ آواز ہے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو اپنے جوشیلے بھاشنوں سے چمتکرت کر دینے والے اور اپنے سمے کے سب سے ذہین راجنیتا مانے جانے والے ذوالفقار علی بھٹو کی. بھارت میں ان کو کچھ خاص پسند نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ پاکستان کے ساتھ 1965 اور 1971 دونوں لڑائیوں میں ان کی زبردست بھومکا تھی. ویسے پاکستان میں بھی بھٹو کے پرشنسکوں اور ویرودھیوں کے دو گٹ بنے ہوئے تھے، یا کہیے ابھی بھی ہیں. یا تو آپ انہیں پسند کرتے ہیں یا وہ آپ کو پھوٹی آنکھوں نہیں چھواتے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کے دھر ویرودھی رہے بھٹو کی کشوراوستھا ممبئی میں بیتی تھی، اور ایک زمانے میں سوتنتر پارٹی کے نیتا اور مشہور بھارتیہ سانسد رہے پیلو مودی ان کے سب سے قریبی دوست ہوا کرتے تھے. بھٹو پر ایک کتاب لکھنے والی اور یوجنا آیوگ کی پور سدس سیدہ سیدین حامد بتاتی ہیں.
شروع میں یہ جب پیلو مودی کے ساتھ یہ دونوں نوجوان لڑکے 13-14 سال کے تھے، یہ لوگ جاتے تھے مسوری، اور وہاں جا کے وہ شارلیول ہوٹل ہوتا تھا اس میں یہ لوگ رہتے تھے، اور پھر وہاں ان کے اسکیپیڈز ہوتے تھے کہ جب کھانا آتا تھا تو جو پڈنگ سرو ہوتی تھی پرانے برٹش انداز میں، وہ چپکے سے تھوڑی سی رکھ لیتے تھے کیونکہ نوجوان لوگوں کا ایپیٹائٹ بہت تھا. اور اس طرح سے انہوں نے اپنے دونوں نے مل کے بہت دوستی تھی دونوں کے آپس میں.
اس زمانے میں بھٹو کے نزدیکی دوستوں میں پاکستان کے مشہور کرکٹ کمنٹیٹر رہے عمر قریشی اور بھارت کے نامی کرکٹ کھلاڑی مشتاق علی ہوا کرتے تھے. پیلو مودی اپنی کتاب زلفی مائی فرینڈ میں لکھتے ہیں،
مشتاق علی جب ممبئی آئے تو زلفی کے گھر پر ہی ٹھہرے، لیکن اگلے ہی دن وہ شرتے بینرجی کی تیز گیند پر بری طرح سے چوٹ کھا بیٹھے. ان کے ہاتھوں میں پلاسٹر لگایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اگلے کچھ دن کرکٹ کلب آف انڈیا کے گیسٹ ہاؤس میں رہیں. رات میں وہ اتنے بے چین ہو گئے کہ انہوں نے آدھی رات کو بھٹو کو فون ملا کر ان سے کلب آنے کے لیے کہا. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو. وہاں انہوں نے قینچی سے اپنے ہاتھ پر لگا پلاسٹر کٹوایا اور پھر چین سے پوری رات سوئے.
ممبئی کے کیتھیڈرل اسکول میں پڑھائی کرنے کے بعد بھٹو امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے برکلے وشودیالے سے راجنیتی وگیان کی ڈگری لی. 1953 میں جب وہ پاکستان لوٹے تو ان کی ملاقات نصرت اصفہانی سے ہوئی. بھٹو کے جیونی کار اسٹینلی والپرٹ نے اس ملاقات کا بہت دلچسپ ورنن اپنی کتاب زلفی بھٹو اور پاکستان میں کیا ہے.
بیگم نصرت نے مجھے بتایا تھا کہ پہلی بار انہوں نے بھٹو کو تب دیکھا جب وہ ایک شادی میں زیور پہننے کے لیے انہیں نکالنے بینک گئی تھیں. بھٹو بھی اپنی ماں کے ساتھ زیور نکالنے بینک آئے ہوئے تھے. ان کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیسی ہو نصرت، اس سے ملو، یہ ہے میرا بیٹا زلفی. پہلی نظر میں وہ مجھے ذرا بھی آکرشک نہیں لگے. ان کی بہن کی شادی پر ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی. ولیمے میں وہ میرے ساتھ ڈانس کرنے لگے. انہوں نے مجھے کس کر پکڑنے کی کوشش کی. میں نے پھس پھسا کر کہا، یہ پاکستان ہے جناب، امریکہ نہیں. زلفی نے یہ سن کر زور کا ٹھہاکا لگایا. ان کی ہمت دیکھیے کہ کھانا ختم ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے اپنی کار میں میرے گھر چھوڑنے کی پیشکش کر ڈالی. میں نے کہا، میں اپنی کار لائی ہوں، آپ یہ زحمت مت کریے. وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ بولے، چلیے ہمارے ساتھ آئس کریم ہی کھا لیجیے. میں نے صاف انکار کر دیا.
اس شروعاتی نا کے بعد نصرت نے ہاں کر دی اور دونوں ویواہک بندھن میں بندھ گئے. بھٹو نے راجنیتی میں قدم رکھا اور ایوب خان کے منتری منڈل میں کئی پدوں پر کام کرنے کے بعد ماتر 34 سال کی عمر میں وہ پاکستان کے ودیش منتری بن گئے، اور اس رول میں انہوں نے پوری دنیا سے اپنا لوہا منوایا. اسٹینلی والپورٹ اپنی کتاب میں بھٹو اور کینیڈی سے جڑا ایک دلچسپ قصہ لکھتے ہیں.
بھٹو کینیڈی کو پسند کرتے تھے اور کینیڈی بھی انہیں چاہتے تھے. ایک بار جب وہ کینیڈی سے ودا لینے سے پہلے ان سے ہاتھ ملا رہے تھے तो कैनेडी ने कहा, अगर तुम अमरीकी होते तो मैं तुम्हें अपने कैबिनेट में ले लेता। भुट्टो ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर मैं अमरीकी होता तो मैं आपकी जगह होता।
राजनीति में भुट्टो नेहरू को अपना आदर्श मानते थे। विदेश मंत्री के रूप में भुट्टो की प्रतिभा निखर कर सामने आई। मैंने सईदा हामिद से पूछा कि विदेश मंत्री के रूप में वो कितने सफल रहे।
Astoundingly, यानी जो उन्होंने तकरीरें की, उनकी जो यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें हुई 1965 में और फिर 1971 में, लैंडमार्क तकरीरें थी। इतना फ्लो करते थे वो, घंटों घंटों तक इंसान वंडर करता है कि अल्फाज का समंदर था जो बहता चला जाता था। ऑरेटरी थी मगर बहुत वेल रीजन्ड ऑरेटरी थी। और एक छोटा सा मुल्क विद मोस्टली जो रिटन ऑफ था दुनिया की नज़रों में, और छोटे ममालिक के साथ उसको एक डिग्निटी देना, दिस वाज अ बिग कंट्रीब्यूशन जिसको कोई रिकग्नाइज नहीं करता। और एक पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अपने कागज़ फाड़ के और फेंके और ये कहे कि आई विल बी अ कंस्ट्रेंड कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स मैंडेट, हम छोड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन करके, और स्टॉर्म आउट कर किया उन्होंने। और ये इत्तेफाक से उस ज़माने के कैमरे ने कैप्चर किया है, जो आपने यकीनन उनकी इमेजेस देखे होंगे। तो इन अ सेंस ही स्पोक फॉर द स्मॉल कंट्रीज।
Legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going.
भारत में भुट्टो के इस वॉकआउट को हूट किया गया, लेकिन पाकिस्तान में इस ड्रामाई भाषण से वो युद्ध हारने के बावजूद रातों रात हीरो बन गए। न्यूयॉर्क से लौटते समय वो रोम में रुके, जहां याह्या खान ने उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए पीआईए का विमान भेजा। एक जमाने में भुट्टो के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे गुलाम मुस्तफा खार याद करते हैं।
सर, ब्लैकआउट था, तो गाड़ी की लाइटें भी नहीं चला सकता था। दो घंटे में पिंडी पहुंचा इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा कि खार साहब, आप कुछ भी हो, जुल्फकार अली भुट्टो को वापस बुलाएं। तो मैंने फिर भुट्टो साहब को रोम में कांटेक्ट किया, और हमारे वो कोड वर्ड था, तो मैंने जुल्फकार अली भुट्टो को फोन पे ये कहा कि मैंने कहा, सर आप वापस आ जाए। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार मुझे मरा तो नहीं दोगे, क्या है? मैंने कहा मैं फोन पे तो नहीं बात कर सकता, हमारे मुल्क के सारे फोन तो डब्ड होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये टर्न की जॉब है, यू जस्ट कम एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट।
भुट्टो को सीधे हवाई अड्डे से प्रेसिडेंट हाउस ले जाकर याह्या खान के स्थान पर राष्ट्रपति पद और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का पद सौंपा गया।
मैं गाड़ी ले गया था एक दोस्त की गाड़ी मांग के, तो उसमें मर्सिडीज कार थी, उसमें भुट्टो साहब बैठे, और उन्होंने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा सीधा प्रेसिडेंट हाउस जाना है। तो फिर हम वहाँ पहुंचे, याह्या खान बैठा था उस वक्त सवेरे इंतजार में, तो उसने कहा याह्या खान ने, हाँ मिस्टर भुट्टो, हमने ये फैसला किया है कि यू आर द इलेक्टेड लीडर एंड यू शुड बी हैंडेड ओवर पावर। अच्छा, जब उनने तो ये कह दिया, अब आगे ये था कि पावर हाउ शुड बी हैंड ओवर पावर। तो फिर आर्मी में एक होता है कर्नल, उसको मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो जैक कहते हैं उसको, तो उसको बुलाया और उसे कहा कि इज देयर एनी वे? उसने कहा यहाँ एक ही सूरत है कि अगर भुट्टो साहब को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की पार ट्रांसफर की जाए। तो फिर वही कागज बनाया जिसमें ये जो इसहाक खान हमारे प्रेसिडेंट बाद में बने थे, ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इनको भी बुलाया, और वो जैक ने और इनने बैठ के वो मुसद्दा तैयार किया, और भुट्टो साहब ने इनकी याह्या खान की ये ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया कि मैं आपको प्रेसिडेंट नहीं बना सकता, अगर आपको मैंने प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर दिया तो मेरी भी सूरत हाल पॉलिटिकली बहुत खराब हो जाएगी और आप भी नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा।
भुट्टो ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ की तर्ज पर रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया। भारत से शिमला समझौता कर 93,000 युद्धबंदियों को छोड़ाकर वापस लाने को पाकिस्तानी जनता ने उनकी एक उपलब्धि के तौर पर देखा।
जुल्फकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से।
भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि उनमें तानाशाही का पुट होने के बावजूद गजब की ऊर्जा और गतिशीलता थी। उनके एडीसी रहे अरशद समी खां अपनी किताब 3 Presidents and an 8 में लिखते हैं,
भुट्टो एक सुपर कंप्यूटर की तरह सोचते थे, उनकी याददाश्त का भी कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है कि उन्हें रात में नींद न आने की बीमारी थी। एक बार आधी रात को फ़ोन कर उन्होंने मुझे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। खाते समय ही उन्होंने उन लोगों के नाम पूछ लिए जो उनसे मिलना चाहते हैं। खाने के बाद मैंने उन लोगों की लिस्ट उन्हें दिखाई जो उनसे मिलना चाहते थे। उन्होंने पेंसिल उठाकर 14 लोगों के नाम के आगे निशान लगाए और कहा कि इन्हें 15-15 मिनट के अंतराल पर बुला लो। मैंने कहा कि आपके अगले कुछ दिन बहुत व्यस्त हैं और फिर आप कराची भी जाने वाले हैं। मैंने कहा कि कराची से लौटने के बाद मैं ये मुलाकातें फिक्स करा दूंगा। भुट्टो बोले, समी क्या इस समय तुम बहुत नींद में हो? मेरा आशय है मैं इन लोगों से अभी इस वक्त से लेकर सुबह 4:15 बजे तक मिलना चाहता हूँ और सुबह 4:30 बजे मेरे पहले मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का इंतज़ाम करिए। मुझे ये इंतज़ाम करने में नाकों चने चबाने पड़ गए। कईयों ने तो समझा कि उन्हें नकली फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पुलिस में मेरे खिलाफ शिकायत करेंगे।
लेकिन फिर 1976 के बाद से भुट्टो से गलतियाँ होने लगीं, जिसके बाद से उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत हो गई।
भुट्टो साहब केम टू पावर बिकॉज ऑफ द पीपल। लोगों ने उनको सर आंखों पे बिठाया, लोगों ने उनको अपना कायद माना। वो कायदे अवाम थे। वो उन्होंने अपने सिविल रो सूट्स और अपनी सिल्क टाइज डिस्कार्ड करके अवामी सूट में आ गए। लोगों ने उनको इतना इन अ सेंस देवर यानी एक्सटैटिक, भंगड़ा करते थे लोग उनको देख के। जब वो बोलते थे तो बोलने नहीं देते थे, बस जिए भुट्टो इस कस्म के नारे लगते थे। वही लोग जिनके खिलाफ 22 फैमिलीज जिनके खिलाफ उन्होंने अपनी इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी की थी और जिसके स्ट्रेंथ पे ये पावर में आए थे, उन्हीं लोगों को फिर ये स्लोली कॉरिडोर्स ऑफ पावर में यही लोग आ गए।
जुल्फकार अली भुट्टो से सबसे बड़ी चूक तब हुई जब उन्होंने एक जूनियर सैनिक अफसर जियाउल हक को पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बना दिया। गुलाम मुस्तफा खार बताते हैं कि उन्होंने इसके लिए भुट्टो को बाकायदा आगाह किया था।
How do you say that? मैंने कहा सर आप जो कुछ कर रहे हैं इसको आपको पछताना पड़ेगा। तो मुझे कहने लगा अच्छा मुझे ये 3-4 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मुझे उनका जवाब दो। तो कहने लगे क्या जनरल ज़िया इंप्रेसिव आदमी है? मैंने कहा नहीं। इज ही सन ऑफ द सॉइल? मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि डज ही स्पीक गुड इंग्लिश? मैंने कहा वो भी नहीं। तो मुस्तफा याद रखना इस बात को कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला हो, कोई साइंटिस्ट का हो, कोई इधर उधर का हो, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर्सनैलिटी हो उसकी, ये तो बाहर से आया हुआ आदमी नहीं, इतना अनइम्प्रेसिव है, इससे ज्यादा मुझे और कौन सूट करता है। मैंने कहा अच्छा साहब अगर आप ये समझते हैं खुदा आपको सही करे और मुझे गलत करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिंदगी का गलत फैसला कर रहे।
यही जियाउल हक बाद में भुट्टो की मौत का कारण बने। जिया ने भुट्टो का तख्ता पलटा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
He was kept in very, very miserable conditions. Everything was in the same room, feces, urine. बहुत ही जिसे कहने चाहिए inhuman उनको ट्रीटमेंट मिली। थोड़ा अपना स्पिरिट भी उन्होंने रखा उसमें, he was able to write. उन्होंने अपने प्रिजन में जब पहला प्रिजन सेंटेंस उन्होंने सर्व किया उसमें इन्होंने खत लिखे हैं। वो खतूत ना कभी पब्लिश हुए हैं ना किसी ने देखे हैं। रेहान साहब मैं बता नहीं सकती कि उसमें जो यानी एक आदमी एक प्रिजन में बैठ के खत लिख रहा है, इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग, लाइन टेढ़ी नहीं, लाइंस आर रनिंग अक्रॉस द पेज, टोटली रीजन्ड, यानी क्या रोशनी होगी, क्या रोशनाई होगी, क्या कागज़ होगा, इतना प्रिसाइज उनका माइंड था। कहीं उनकी हैंड राइटिंग में इतना सा झोल नहीं, कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस, ये करो वो करो, इस तरह से पार्टी को करो, ये तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, डांट डपट, पूरा अपना कंट्रोल उन्होंने प्रिजन में रखा था। किसी को जरा सा फ्लैग नहीं होने देते थे, ही वाज एकदम से शार्पली रिएक्ट करते थे।
4 अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को एक विवादास्पद मुकदमे के बाद फांसी पर चढ़ा दिया गया।
This is Radio Pakistan. A press note issued by the Ministry of Interior in Islamabad today says following conviction by the Lahore High Court in the Nawab Muhammad Ahmed Khan murder case and subsequent rejection of his appeal by the Supreme Court, Zulfiqar Ali Bhutto was hanged to death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi District Jail.
I think Pakistan has never had a leader like him. He was an outstanding leader of South Asia and एनी वेयर इन एशिया. उनका माइंड इतना फाइन था, इंटेलेक्चुअल, और उसकी एक्सप्रेशन जिस तरह से वो मिला जुला के हिंदी सिंधी उर्दू सिंधी पंजाबी मिला जुला के बोलते थे, बहुत अट्रैक्टिव था. फिर सबसे बड़ी बात ये इंसाइसिव माइंड था उनका. ही रियली हैड ए नेपोलियनिक स्ट्रीक इन हिम. तो मेरे ख्याल में वो लीडरशिप क्वालिटी पाकिस्तान विल नेवर हैव अनलेस देयर इज सम मिरेकल. मैंने तो नहीं देखा वो लीडरशिप क्वालिटी इन बेनजीर भुट्टो. नाउ आई डोंट सी इट एट ऑल इन बिलावल भुट्टो. ही वाज अ जीनियस. ही वाज लाइक जैसे एक बिजली सी चमकी और खत्म हो
गई.
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली.